चौथा तक हम लोगों ने कर चतुर्थ याम तक कर दिया था। अब हम लोग साधन भजन में, ये भी साधन भजन जो कर रहे हैं बहुत उन्नत चतुर्थ याम में पहुंच गए हैं। पर चतुर्थ याम का भजन क्या है, बड़ा पतला होता है तो सुख है। हाँ क्या है ये बोलते पारे
रुचि
बोलो
रुचि
अरे
हाँ रुचि तो नहीं
रुचि में आसक्ति हो
रुचि मारा रुचि
पर पंचम में आसक्ति हो आपने
चौथा तो
आपने चौथा तो जिगर स्कच्चा आपने चौथा तो जिगर स्कच्चा
पंचम पंचम आसक्ति सत्ता
सत्ता प्रथम
उसके बाद दूसरा जन
तीसरे जन साधु संग में अनर्थ नहीं प्रयुक्त
तब निष्ठा रुचि और पंचम में आसक्ति। यह आसक्ति भी बहुत कठिन है, यह तो श्रद्धा भी दुर्लभ है, लौकिक की श्रद्धा हो सकती है किंतु परमात्मा की श्रद्धा निष्ठा बहुत ही उन्नत बुद्धि स्थिर हो जाती है, अनर्थ प्राय दूर होने लगते हैं। उस समय ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है, उसकी नजर ही नहीं जाएगी, भजन में तत्पर रहे, श्रवण कीर्तन में तत्पर रहे, उस समय अपने आप जब आसक्ति होगी निष्ठा के बाद में रुचि आसक्ति, उस समय वो श्लोक अपने आप उसको आ जाएगा, ये मैं कृष्ण दास हूँ और सुख और दुख हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा ये प्राप्त है, इसको भोग लेना चाहिए, ये भोगना भी पड़ेगा। और भगवान चाहें तो भगवान नाम के प्रभाव से, श्रवण के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से वो दूर हो जाएगा, वो कर्म फल नहीं आएगा, तो उसको भगवान की कृपा मान करके उसको सह लेना, भगवान की कृपा मान कर। कैसे कृपा मानेंगे, पहले बात लाया था कि साधक ये देखता है, शास्त्रों में देखता है भगवान नाम करने से निष्ठा पूर्वक यदि कोई नाम करे, रुचि के साथ में आसक्ति के सहित में नाम करे तो वो सब कुछ दूर हो जाता है, अनर्थ अपराध सब कुछ दूर। पहली स्थिति में क्लेश अग्नि भक्ति है ना, इसलिए क्लेश सब उसके दूर, पाप अपराध पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दुख सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए हम नाम कर रहे हैं होगा, और यदि नहीं भी है तो हम अपने कर्मों का फल समझ करके भोग लेंगे, और नहीं तो भगवान हमको ऐसा करने के लिए दीन हीन बनाने के लिए ऐसा किया, इसलिए उसको भी झेल लेनी चाहिए और झेल करके निरंतर हृदवा बहुवी विदधन नमस्ते जीवित जमू की पदे सदाय भा सुमीक्ष मान। सुमीक्ष माने क्या है, समीक्षा करनी चाहिए, सुसमीक्षा विवेचन करना चाहिए, विचार करके ये देखना चाहिए, चित्त घबराए नहीं और उनको विचार करके देखना चाहिए। अच्छी ये द्रौपदी के ऊपर में विपत्ति पड़ी थी, उसका ये कर्म कर्मों का फल था, कर्म का फल नहीं था। भगवान ने जगत में भक्तों का आदर्श और द्रौपदी जी की प्रसिद्धि कराने के लिए ऐसा कर रहे थे, भगवान तो इच्छा करने से वो साड़ी का छोर छूता और मर जाता, ऐसा भी तो हो जाता, इसलिए अपने भक्तों को आर्थ युक्त बनाने के लिए। और उस समय केवल हमारा स्मरण करना और तब उनका दुख दूर हो जाता है, ये सहज भाव से दिखलाने के लिए, या और कोई भी उसकी लज्जा नहीं रखती। भगवान कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन करके छठ पूज को दी। इस चीज को प्रदर्शन करना था, दिखाना था, इसलिए उन्होंने झट कर कपड़े बंद करके और साथ कितना 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन की भुजाएं थक गई, खाइते 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 थक गई। पहले दांत में पुर रहे थे ना, हंस रहे थे, उनके पसीने आ गए। दुर्योधन अपना जंगा खाली करके कपड़ों से तैयार बैठा था, बस बैठा ही रह गया। देख ये क्या हो रहा है, वो तो भीष्म पितामह जी और धृतराष्ट्र इत्यादि ने गंधारी ने कहा जल्दी करो, नहीं तो अब ये सब प्रलय होने वाला। बस तब वो छोड़ दिया। इसलिए द्रौपदी जी पांडवों के ऊपर में जो कष्ट आए थे उन लोगों ने झेला कि नहीं, सब कुछ हंसते हुए दुख से भी झेला, क्योंकि झेला जब सिद्ध भक्तों में ऐसा देखा जाता है तो हम लोगों को तो जरूर झेल लेना चाहिए। दुख आएंगे और जरूर आएंगे, चाहे कर्मों के फल से आए, चाहे भगवान हमको दीनता देने के लिए। हम लोग बड़े अक्खड़ स्वभाव के, हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हम दुरुस्त कर देंगे जगत को। तो आज तक तो कोई जगत को दुरुस्त नहीं कर सका, अपने ही दुरुस्त सब लोग। कीचक को देखो, दुर्योधन को देखो, कर्ण को देखो, दुशासन को देखो, और इसके बाद में पिटलक भी आया और सभी लोगों को देखा जाए। इसलिए लोगों का अभिमान को दूर करके उनको दीनहीन रख करके भगवान का भजन करना। इसलिए विपाकम वो अपने कृतों को उत्पन्न हुए हैं विपाक, अथवा हृदवा भगवान की उसको दया मान करके तत्ते कंपम तत्ते, ये तुम्हारी तुम्हारी माने कृष्ण के लिए प्रार्थना कौन कर रहा है, ब्रह्मा जी, ये आपकी कृपा। इसलिए हृदवा बहुवी विदधन नमस्ते, ऐसा समझ करके विचार करके स्थिर बुद्धि से और उदाहरणों को देख करके स्थिर कर दिया। जब ऐसा करके अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो और सब का भार उनके ऊपर में होता है, वो ग्रहण कर लेंगे। मान लिया कि हमने एक गाय को बेच दिया एक व्यक्ति के हाथ में, अब उस गैया को कोई मार रहा है तो वो जो खरीद लिया है वो क्या करेगा, गैया को पुकारना पड़ेगा जैसे हम हमारी रक्षा करो, कि गैया की अपनी आप वो रक्षा करिए मेरी है। वैसे ही जब तक हम लोग आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में नहीं करते हैं तब तक हम लोग बड़ा नींद नहीं आएगी, पांच गोली खाने पर भी नींद नहीं, छटपट छटपट छटपट। और जिस समय में आत्मनिवेदन तुहा पदे करी कोई परम सुख दुख दूर गलो चिंता ना रही
चौधरी की आनंद,
जितनी भी विपत्ति आए क्लेश जीवन में आए, चिंता का विषय आए, झगड़ा रहे खूब झगड़ा, उस समय में कहो प्रभु मैंने आपके चरण, आप तो जरूर हैं, आप शरणागतों तो की भी रक्षा करते हैं, इसलिए अब मैं निश्चिंत हो गया। अब मेरी लज्जा रहेगी तो ठीक है, नहीं तो आपकी रहेगी, अन्य तो आपकी लज्जा जाएगी। बस निश्चिंत होकर के बैठ जाओ, जो कुछ होगा देखे वो प्रभु देखे। तो क्या वो लिखा है ना उपसन्नाना, जो माने ऐसे शरणागत हो गए हैं, आजकल के भगवान रक्षा नहीं करते, रुद्धा गुहायन कि मजतो नोपसन्ना। क्या आजकल यदि घर से कोई निकाल दिया, हम निकल भी गए तो कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलेंगे, मुर्दा घाटी में घर घर जो लोग फेंक देते हैं, फेंकने देते हैं कपड़े पुराने पहन लूंगा क्या, क्या पत्ते और फूल आजकल वृक्षों में नहीं लगते, वहां से लेकर के खा दूंगा। क्या पहाड़ों में कंदराएं नहीं होती, क्या पेड़ में छाया नहीं होती, क्या नदियों का जल सब नदियों का जल सूख गया है, ये पानी नहीं मिलेगा? क्या भगवान पहले जो दया करते थे अब अपने शरणागतों पर दया करना भूल गए? मैं किस लिए विषय लोगों के यहाँ जाऊँ? दास को करके कहूँ
कस्मात भजन्ति कवयो
धन में जो दुर्मदांध व्यक्ति हैं उनके पास में दांत ऊपर करके हाथ जोड़ करके किस लिए जाए? हमारी रक्षा करो, ये जगत के लोग हमारी किसी भी विषय में रक्षा कर सकते हैं, रक्षा करने वाले वही हैं। इसलिए क्यों नहीं हम उनके चरणों में अपने को छोड़ दें और निश्चिंत हो जाए? गुरु जी भी हैं, वैष्णव लोग भी हैं, बड़े समर्थमान हैं, इसलिए आत्मनिवेदन वहां पर तुम्हारे चरणों में आत्मनिवेदन करके भाई जो परम दुख दूरेगा एक सेकंड में बस मिल जाए। वो वैश्या थी सब समय पर पुरुषों की चिंता करती करती ये आएगा हमको पैसा देगा, ये आएगा पैसा देगा, करते 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 आधी रात तक देखती हुई बस झंडक क्या दो फेंक दिया, जरूरत नहीं, बस कबाड़ बंद करके अपने कपड़े उतार दिए और आराम के साथ एक मिनट जगत से निराश होकर तो उसमें तो कुछ गड़बड़ी दिया, किंतु शरणागत होने पर भगवान का सचमुच में ये कह करके देख लो जो कुछ होगा हम अपने शरीर को छोड़ दिया। द्रौपदी ने छोड़ दिया ना अपना, जब तक वो चेष्टा करती रही तब तक कुछ नहीं हुआ, और जब अपने चेष्टा छोड़ करके एकदम संपूर्ण रूप से उनके ऊपर में छोड़ दिया एक सेकंड की देरी हुई। उसी तरह से देख लो, प्रतीक्षा करके देखो, अनुभव करके देखो, ना एक बार कोई परीक्षा करके देख लो ये बात ठीक होती है, नहीं तो ये जगत में जीना बड़ा बड़ी मुश्किल हो जाए। विशेष करके भक्ति राज्य में कंटक कोटि कंटक है, वो कांटे चारों तरफ से आएंगे, किंतु जब भगवान के भक्ति छोड़ दो। ये जिस समय में ध्रुव जी अथवा नारद जी घर छोड़ करके चले गए भजन करने के लिए गंभीर अरण्य में सांप बिच्छू दस बाघ सुअर कितने तरह के जानवर भरे पड़े हैं, बस भगवान को ऐसा कर दिया कि मैं भगवान की गोदी में बैठ करके बस छोड़ दिया, बस कोई सामने पास में नहीं फटका और भजन करके उसकी शक्ति। इसलिए सबसे पहले ये कहा गया कि शरणागत होना सीखो। दूसरी बात, दंड देने वाला कौन है? दंड कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दंड दे सकता है? दंड देने वाला विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी को कोई दंड नहीं, दंड देने वाले एकमात्र उनकी इच्छा नहीं होगी तो कौन क्या दंड देगा? इसलिए चित्त को चंचल करके हरि भजन में बाधा क्यों डाले? इसलिए निश्चिंत होकर आता रहे और उनके चरणों में अपने को छोड़ करके शरणागत होकर के हो आनंद चित्त से भगवान का भजन। प्रहलाद महाराज जी को देखो, हम प्रहलाद महाराज की नहीं है किंतु उन्हीं की परंपरा में है। प्रहलाद महाराज को जो कुछ भी दुख हुआ उन्होंने छोड़ दिया था अपने को, भगवान को गरज पड़ी समुद्र में डूबते हुए उनको बचा करके ले आए, पहाड़ों से गिराए तो अपनी गोदी में ले लिया, विष खाया तो विष प्रभु ने ही ले लिया, आग में उसको जलाया तो आग ही नहीं ली, इस तरह से भगवान रक्षा। इसलिए शास्त्रों की बात दुखी नहीं, इसलिए शरणागत पहले हो गया और ये उसी तरह से होते हुए हित बात बखूबी विदधन नमस्ते अपने हृदय से, हृदय में ये भावना, हृदय में मन में ये भावना है और उसी को मैं आपके शरणागत भगवान के लिए मेरा उनके शरणागत हो रहा, और वाणी के द्वारा भी उसको बोल मैं आपका हूँ। इस प्रकार से कहता है वाणी के द्वारा भी, मन में भी ऐसा सुनो और बपु भी उनको एकदम साष्टांग प्रणाम करके अपने को अर्पित करते। इस तरह से जो करेगा जीवित जहां मुक्ति पदे सदा भाग, जैसे जीवित रहना ही दाय में उसका भाग है। माने क्या, एक लड़का पिता को कोई लड़का नहीं था, वो अपुत्र थे, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनको एक अंत में बच्चा पैदा हुआ लड़का। वो लड़का के लिए रजिस्ट्री करने की अथवा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, पिता का उत्तराधिकारी है। यदि वो जीवित रहा, पिता के मरने तक वो जीवित रहा, वो उत्तराधिकारी उसका अपने आप हो जाएगा। यदि बीच में मर गया तो खत्म उत्तराधिकार। ऐसे यदि भक्ति करता रहा कोई, ऐसे समझ करके भगवान का चरणों को नहीं छोड़े और तन मन वचन से इसी प्रकार से जैसा करे भगवान का भजन करता रहा कोई, तो मुक्ति का अधिकारी, मुक्ति पदे, मुक्ति के पद में उसका अधिकार होता है। अर्थात मुक्ति के पद में मैंने, मुक्ति मैंने भगवान की चरण को की सेवा को मुक्ति, विष्णुंग लाभव अथवा मुक्ति और पद दोनों में,
मुक्ति जिनके पद है,
मुक्ति और पद। अच्छा, तो मुक्ति जिनके पद में है अर्थात मुक्ति किसके पद में है, भक्ति के पद में, भक्ति के चरण में मुक्ति पहले। इसलिए मुक्ति पदे अर्थात जिनके चरण में, अर्थात मुक्ति के भक्ति के आभास से ही मुक्ति हो जाता है, ये तात्पर्य। तो मुक्ति है जिसके पद में, वो भक्ति वो अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उसका उत्तराधिकारी उसको मिल जाता है। किंतु यदि अपराध किया और भक्ति से चुप हो गया तो नहीं होगा बीच में। अथवा मुक्ति एवं पदे दाय भाग, मुक्ति में भी तो उसका अधिकार होगा ही, साथ साथ में पद में, पद में नहीं, भगवान का जो धाम है, भगवान का जहां पर भगवान की लीलाएं हो रही हैं, उसमें प्रवेश करने का, उसमें सेवा प्राप्ति का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति उसका यदि भक्ति से चित्त नहीं हो। अर्थात ये जो भाव कर रहा है, अनुकंपाम और अपने कर्म फलों को भोग करता हुआ, या उसमें ये भगवान की कृपा से ही हम कोई ऐसा मिला, जीवन धारण करने के लिए तो कुछ चाहिए। यदि भजन करते करते यदि मुक्ति हो गई, शरीर में प्रारब्ध कर्म नहीं रहा, तो भजन कैसे करेगा। इसलिए भगवान कुछ प्रारब्ध कर्म उसमें अपने तरफ से जोड़ देते हैं, मुक्ति नहीं देते, नहीं तो मुक्ति हो जाएगा तो इस संसार से चला गया, फिर साधन भजन होगा नहीं। इसलिए साधन भजन करने के लिए उन अपने तरफ से कुछ ग्रेस मार्क दे करके कुछ प्रारब्ध कर्म जोड़ दिया, और जोड़ करके उसको और कुछ जीवन दान करा दिया, जिससे कि वो भजन की स्थिति हो। यहाँ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, दूसरे जन्म में ले जाएंगे, तीसरे जन्म में ले जाएंगे, चौथे जन्म में ले जाएंगे। यहाँ तक कि जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है, जब लीला खत्म हो गई है, उनके परिकर लोग हैं उस समय, जैसे हम लोगों का हुआ, अभी तो मात्र 400 वर्ष बीता है, उन लोगों का जन्म दे दिया और उनके भक्तों का संग कुछ दे दिया। अब इसमें ज्यादा परिपक्व हो जाएगा उनके संग में, तो अब वो क्या कर देंगे, महाप्रभु जी की को तो नहीं दे सकेगा, किंतु रूप रघुनाथ और इन लोगों को दे सकेगा, इन लोगों की कृपा। और इसके बाद में क्या दूसरे ब्रह्मांड में फिर जन्म होगा, तो वहां महाप्रभु जी की लीला चल, उसमें परिपक्व जब हो जाएगा, तो जहां पर कृष्ण की लीला चल रही है बस वहां पर अपने शुद्ध से, फिर जब वहां का पूरा हो जाएगा तो बोलो वृंदावन में, ऐसे ये सब क्रम विकास। दुख भोग करी निज कृत कर्म फले, काय मन वाक्य दौ चरण कमले, भक्ति करी काटे काल तव कृपा आसे, मुक्ति पद तव पद पाई अनेक। इस प्रकार से भजन करते 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 आसक्ति से जब हृदय एकदम बिल्कुल पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाता है, तो शुद्ध सत्व उसमें तब तक कोई चिंता नहीं, तब तक अनायास ही सब कुछ होने लग जाएगा। इच्छत तु अच्युतांगेन भजतोनुवृत्त्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परं शान्तिमुपैति दिव्यम्। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में ये नारद ऋषि और वसुदेव जी में ये बातें चल रही, और उन्होंने नवजोगिंद्र उपाख्यान कहीं से नवजोगिंद्र घूमते घूमते सुनते महाराज ने भी के दरबार। पहले बात हुई कृष्ण दर्शन की लालसा से चित्त स्थिर करके द्वारका में आएंगे तो चित्त स्थिर हो जाएगा और कृष्ण की लीला कथा सब सुन सकेंगे, इसलिए वहां पर नारद ऋषि आए। और जब हमें भ्रमण करेंगे तो उनका पीछा वो उनका अभिसंपात दक्ष दक्ष का अभिसंपात पीछा कर इसलिए जाएंगे, वो गोदोहन काल से अतिरिक्त रह नहीं सकते, गायत्री जाती है बस उतना है तक एक जगह में, अधिक उपदेश किसी को नहीं देंगे। इस तरह से संसार में भ्रमण करते हैं, और जब कृष्ण की दर्शन की लालसा होती और चित्त स्थिर होकर के वहाँ पर कुछ दिन ठहरे हैं तो द्वारका में जाते हैं। तो द्वारका में किस लिए जाएंगे? इसलिए जाते हैं कृष्ण की भुजाओं के द्वारा वो रक्षित, वहाँ पर माया नहीं आ सकती। गोविंद भुज गुप्तायां आवासित नाग कृष्ण दर्शन। तो वो नारद इसलिए अपने मन को स्थिर करके वहां पर कृष्ण का दर्शन करेंगे, माया वहां पर नहीं पहुंच सकती है जहां पर की कृष्ण की शक्ति है, उनकी भुजाएं मैंने क्या, तो वहां धाम उनकी भुजाएं हैं उससे धाम रक्षित है। ये मथुरा धाम भी कृष्ण की भुजाओं से ही रक्षित है, इसलिए ये ब्रज भी वैसा ही है, माया का प्रवेश नहीं है। किंतु यदि हम माया का प्रवेश करा लेते हैं तो वो दूसरी बात, हम करा ले तो वो दूसरी बात, इसलिए वो नारद जी वहां पर जाते हैं। जब वहां गए तो वहां पर स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा चल रहा था, ओम
गुरवे स्वाहा
या दूसरा स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम महाजोगेंद्र स्वाहा, ये सब चीज चल रहा था जैसा लोग की कृति है। तो नारद जी को ऊपर से एक प्रकाश निकला और प्रकाश क्रमशः पृथ्वी की तरफ में आने लगा, लोगों ने कहा ये दूसरा सूर्य जा रहा है या सूर्य का कोई टुकड़ा कट करके नीचे गिर रहा है, सब लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे, स्वाहा कर रहे हैं देख रहे हैं ऊपर, जैसे हम लोग पाठ सुन रहे हैं उधर बंदर देखते हैं ऐसे ही देखने तो लोग देखने लगे। इतने में धीरे धीरे दिखा, अरे भाई वो प्रकाश के अंदर में कुछ है, थोड़ी देर के बाद में देखा जब खड़ा हूँ पहले नारद ऋषि जी भूमि तल पर उतरे, बस सब लोग बस दे जी ने कहा बस करो यज्ञ, अब जरूरत नहीं, यज्ञ करने का फल ही यहाँ पर उपस्थित हो गया, संत आ गया भगवान के प्रिय संत आ गए, अब यज्ञ की जरूरत नहीं। कृष्ण वहां बैठे हैं किंतु कृष्ण को यज्ञ का फल यज्ञेश्वर उनको नहीं समझते, किंतु नारद जी को देखो भगवान से नर विशेषता उनके भक्तों का, भगवान नहीं कहते कि मैं भगवान हूं तुम ये करो वो करो वो करो, उन्होंने मना नहीं किया, किंतु नारद जी आते बस वसुदेव जी के अंदर में आई यज्ञ बोल अजय और ऋतिकों सब ऋतुकों को बुलाता है, अब यज्ञ बंद कर लो, इस यज्ञ से हम लोगों का अंतर और बाहर दोनों काला हो गया, किंतु अभी तक चित्त शुद्धि नहीं हुई, अब उसका फल ये आ गया, इसके फल के द्वारा ही हमारी यज्ञ की समाप्ति और उसका फल मिल गया। सब लोग उनको प्रणाम किया और उनको घेर करके बैठ गया और उसने उन्होंने प्रश्न प्रभु मैंने भगवान को अपने पुत्र के लिए आराधना के लिए पुत्र के रूप में हमारे लिए आया, हमने इसलिए आराधना नहीं कि मैं भूल गया था मोहित हो गया माया के द्वारा। इसलिए मैंने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में पधारे, उनसे मुक्ति हमने मांगा ही नहीं, और देखते हैं कि उनको होकर के भी हमारे मुक्ति तो हुई ही नहीं। तो इस विषय में आपकी कृपा चाहता हूँ, जब हम मुक्ति ये संसार से छुटकारा पा करके हमारी मुक्ति कैसे होगी। नारद जी मन ही मन में हंसे, हंस के देखो इसके घर में साक्षात परब्रह्म बैठे हैं, और ऐसे अनुभूज की तरफ में ऐसा जो कुछ नहीं समझते हैं, अज्ञानी की भांति ये प्रश्न करता है। बतलाओ, जैसे हम कोटि कोटि जन्मों में भी वसुदेव जी नहीं हो सकते, हमको ये अधिकार नहीं है कि मैं कृष्ण का पिता बन जाऊं, और अपनी भक्ति से इनके ये पिता बने हुए हैं, और वो कहते हैं बाबा बाबा पिता पिताजी कहते हैं। अतः मैं उनके जैसा सौभाग्य, और फिर हमसे ये कह रहे हैं कि मैंने मुक्ति के लिए मुक्ति साधारण की थी, ये हमको भी ठग रहे हैं, और इसी बहाने से जगत को शिक्षा दे रहे हैं ये संतों का आदर करना चाहिए, और मुक्ति गंदी चीज है वो इन्हीं से कहलाएंगे। ये मुक्ति गंदी चीज है, आप परम महा सौभाग्य मानते हैं, आप भगवान के पिता, इसलिए उनसे प्रश्न किया। तो उन्होंने इसका उन्होंने कहा कि हमको कुछ आता जाता नहीं है, न मुझे कुछ अनुभव है। संत लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों को ऐसे ठग लेते हैं, हमको न तो अनुभूति है और न मैं ये सब चीजें जानता। हाँ, शास्त्र में एक जगह पढ़ा है, बहुत पहले की बात है, महाराज देवी के राज्य में 9 जोगिंद्र लोग गए थे। ये 9 जोगिंद्र कौन थे? कवि हवि अंतरिक्ष पिप्पलायन
प्रबुद्ध पिप्पलायन आविरत चतुल
चमसवर भावी, ये लोग, ये 9 नंग धड़ंग, मैं किस जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, सन्यासी, ये सब कुछ नहीं। और दू परमहंस ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, तो नेमी महाराज ने भी उन्हीं से यही। तो उसके उत्तर में एक एक आदमी एक एक प्रश्नों का उत्तर, 9 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। तो वही यहाँ पर बतला रहे हैं, पहले ऋषि हैं
कवि,
कवि वही कवि प्रश्न का उत्तर दे दिया। इति माया से पार कैसे हम जा सकते हैं, शांति कैसे हो सकती है, माया के राज्य में शांति और सुख नहीं, जितना भी जैसे हो। इसलिए उसका उपाय उनको बतला रहे हैं, उसी को भक्ति के ठाकुर यहाँ पर कोट कर रहे हैं। इति अच्युत अंग्रिम, इस प्रकार से अच्युत माने श्री कृष्ण जो कभी च्युत नहीं होते हैं किसी भी अपने गुणों से, विशेष करके हम लोगों की किस चीज की जरूरत है, उनका कौन सा गुण, अभी हम लोगों को सौंदर्य माधुर्य की जरूरत नहीं है, उनकी भक्त वत्सलता कृपा की जरूरत सबसे पहले, उनकी करुणा की जरूरत। ऐसे जो अच्युत हैं, जो अपनी करुणा से कभी भी विच्युत नहीं होते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों की अंग, चरण कमलों का भजतो अनुवृत्त्या, अनुवृत्ति के साथ में भजन करते हैं, भजन अनुवृत्ति के साथ में। अनुवृत्ति माने क्या है? अर्थात मैं उनका अनुसरण करूंगा, इस प्रकार की चित्त वृत्ति के लिए, वृत्ति के साथ में। हम लोग सुनते हैं, अभी हमने बतलाया, हमने कहा भी, न तो हमारे ही यहाँ पर कोई दांत कटा और आप लोगों में से कटा की नहीं, मैं नहीं जानता, क्या शरणागत होना चाहिए भगवान। और जो शरणागत जन्म हो जाता है उसको कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्या होगा, मैं मरूंगा कि क्या होगा, ये कष्ट होगा, ये सबसे ऊपर उसकी चिंता नहीं होती, कृष्ण उसकी चिंता करते हैं। इसका नाम है, यदि उसी प्रकार की धारणा बद्धमूल हमारे हृदय में हो जाए, इसका नाम है अनुवृत्ति। इस वृत्ति के साथ में हमको सुनना चाहिए। कथाओं का कीर्तन भी उसी प्रकार से तो अनुवृत्ति, नहीं तो यहाँ पर सुना, यहाँ से नीचे जाकर के किसी एक बात कोई बात हुई और उसी के लिए परस्पर झगड़ा, सब यहीं पर सीढ़ियों पर ही हम भूल गए या हॉल से निकलते हैं, ऐसा नहीं। अनुवृत्ति एकदम निश्चित रूप में, ऐसा ऐसा ही मैं एकदम देकर के एकदम निश्चित। प्रहलाद महाराज की इसीलिए बात है, उनको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं, विष दे रहे हैं, डंक सांपों से कटवा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। राघवी राघवी मारवी
जो इच्छा
नित्य दास प्रति तुहा अधिकार, मारो या रक्षा करो ये तुम्हारे ही हाथ में है, अब हमने तो सौंप दिया, सौंपी अच्छी माथा, मैंने माथा अपना ही आपके चरणों में सौंप, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो उसी तरह से है ना, अनुवृत्ति से यही कृष्ण, ऐसे कृष्ण का जो भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो भजन भी दो प्रकार, एक साधन और एक सिद्ध, एक वैधि भक्ति के अनुसार में और दूसरा है रघन भक्ति, और उसमें भी तरह तरह के तारतम्य है, अनर्थ युक्त है, अनर्थ रहित है, इसके बाद में प्रीति के सहित है, ये सब तरह तरह की, ये सब तारतम्य उसमें है। सुभक्ति विराग ज्ञान तहां के ऊपर, तो उससे क्या होता है, अनुवृत्ति से भजन करते करते भक्ति माने साधन भक्ति, पहले साधन भक्ति, फिर जितने परिमाण में साधन भक्ति होती जाएगी उतने परिमाण में विषयों से विरक्ति भी होती चली जाएगी, एक साथ एक ही अनुपात में। यदि भजन करते हैं विरक्ति हुई नहीं संसार से तो समझो कि वो भजन नहीं हुआ। और भगवत प्रभु और भगवान की विषय में अनुभूति बोध उपलब्धि ये भी जरूरी है, तीनों चीजें साथ साथ में होगी, वो उस समय में उपलब्ध करेगा, ये विपत्ति आई और उससे हमको बहुत हानि होती किंतु भगवान के भजन करने से सहज ही कर उपलब्धि कर, इसी विषय में सब विषय में वो उपलब्धि करे, इसलिए भक्ति साधन भक्ति साथ साथ में विषयों के प्रति विरक्ति और उपलब्धि, इसी को और एक जगह कहा
भक्ति परेशान
भक्ति मैंने साधन साथ ही साथ में भक्ति परेशान भाव मैंने भगवान की अनुभूति, उनकी दया हमारे ऊपर तो पद पद पर हो रही। अभी हम लोग देखते हैं, मैं भी विचार करके देखता हूँ भगवान की कितनी बड़ी दया है, न जाने कहाँ जन्म, कहाँ पर किस रूप में जन्म, प्रदेश में और किस रूप में संतों की कृपा हो गई, अहैत के रूप में उनकी दया हुई और हमारे मन को मोड़ करके वहां से खींच करके अपने चरणों में संतों ने दे दिया, और धीरे 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 हमको कहा नवदीप धाम में गंगा के तट में जितने भी हम लोग आश्रम वहां पर हो रखा और सब जगह साधुओं का आश्रम, यदि गंगा तट से हटा तो समुद्र के किनारे पहुंच गया जिसमें गंगा नदी मिलती है, और वहां पर से यदि हटाया तो जमुना के किनारे यहां पर रख दिया, मथुरा में लेकर के रख दिया जहां पर एक दिन रहने से भी भक्ति होती है, इतनी बड़ी भारी भगवान, इतना ही नहीं और लोग भी तो हैं, किंतु सभी लोग जो आदर करते हैं सुनते हैं प्रमाणिक मांगने लगे जिसको भगवान की कितनी कृपा हुई, जो लोग दुखी हो जाते हैं उनको भी सांत्वना देने की भावना रखती है और सब लोग सांत्वना पाते हैं, ये कितनी बड़ी भावना है। अब जमुना को जहां थोड़ा सा जमुना के किनारे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो वृंदावन, ये भगवान की अद्भुत कृपा है, महती कृपा पद पर पर ये जीवन में मैं उपलब्धि करता हूँ, कितने महापुरुषों का संग हुआ जिनका कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे सब महात्मा होता है। वृंदावन के प्रति एक भावना जगा दी, नाम श्रेष्ठम मन बपी सती पुत्र मत्र स्वरूप रूपम तस्यागे गुरिपुरम माथुरी गोस्तवाग्नि राधा कुंडम गिरिवर महो राजामासवासम प्राप्तो जस जिनकी बहु प्रचुर कृपा के फल से आज इन एकादश की द्वादश वस्तुओं में प्रति उनकी कृपा की अब सोचने कब उनकी कृपा गुरु और मंत्र नाम चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन उनके जो परिकर हैं चैतन्य महाप्रभु ने फिर राधा कृष्ण के चरण में वृंदावन में वृंदावन से भी नहीं पेट भरा गिरिराज से भी पेट नहीं भरा राधा की कृपा चाहिए इसे नीचे की कोई चीज नहीं चाहिए बदलाव ये कितनी बड़ी भारी उनकी कृपा है इसलिए ये सबको भगवान की ये सपना चाहिए सब समय अनुभूति रखो ऐसे इसका नाम है उपलब्धि चीजें हैं किंतु उसको उपलब्धि करना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तो है ही है किंतु इसको समझ करके लोगों के साथ में समझा करके और उसका विचार दे देना ये थोड़ी सी उपलब्धि इसलिए कहते हैं कि न्यूटन ने इस थ्योरी को बाहर किया जगत के लोग ऋणी उस भगवान के ऋणी नहीं है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बताया बनाया और उसके द्वारा सब पृथ्वी का रोटेशन सूर्य का रोटेशन सब कुछ चल रहा है उस भगवान के प्रति हम नहीं है ऋणी उस न्यूटन के प्रति जो इस थ्योरी को बदला दिया ऐसे ऐसे है तो वो लोग भगवान की कृपा नहीं प्रत्येक काम में प्रत्येक क्षण में भगवान की कृपा की उपलब्धि इसी को कहते हैं भगवत प्रबोध साधन भजन भी अपने आप नहीं होता अभी हम लोग साधन भजन करेंगे तो मन चंचल इधर उधर इतना छटपट छटपट लोग विघ्न बाधा देंगे और भगवान की थोड़ी सी कृपा होगी तो वही साधन भजन अपने आप होने लगता है रुचि होने लगती है विषय वासना भी दूर हो जाता है इसलिए ये तीनों में सब भगवान की कृपा उपलब्धि करते तीनों एक साथ होंगे ये महापुरुष लोग क्या करते हैं इसी की अनुभूति कर लेते हैं बस उनको हो जाता है सब कुछ हम लोग हो रहा है किंतु उपलब्धि नहीं करते हैं भगवान की वजह ऐसा जो लोग कर सकते हैं ऐसे गुरु जिनके हैं वो लोग भगवान की वजह भाव वो लोग परम भाव हिराजन ऐसे परम भागवतों की कृपा से उनके संग से उनके विचारों को ग्रहण करने से अनुवृत्ति करने से वो जो पहले अनुवृत्ति बताए अनुवृत्ति करने से ही पराम शांति उपायुक्ति दिव्यम वो दिव्य माने अलौकिक जो शांति इस जगत में नहीं है उस अलौकिक शांति कौन सी शांति पराम शांति परम माने गोलोक वृंदावन की जो वो रसमय जो भक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ उसको कृपा साधारण ये जो शांति है ना शांति है ब्रह्मवादी वो तटस्थ है उसमें कोई लाभ नहीं है शांति किसको कहते हैं शांति हो जाएगी तो सो जाएंगे कष्ट दूर हो गया तो सो गए ना तो सो गए तो फिर क्या हो जगत से तटस्थ हो गए इसलिए हम लोग शांति नहीं चाहते शांति कौन चाहेंगे जो ब्रह्मवादी ज्ञान बाकी हम लोग शांति एकदम नहीं चाहते तब उसके चरणों में शांति है जहां वो भाव भक्ति का पराभक्ति हुई अपने आप शांति तो अपने आप बिना बुलाए चली गई ये सांख सनंदन इत्यादि इनको शांति थी किंतु वो जो सुख है परा
परा शांति
सेवा में कृष्ण की सेवा में कृष्ण ने कहा अरे क्या बेटा कह रहे ये पंखा तो ले लो मर पंखा हमको चलो ऐसे ही कुछ पैर हमारा कदा हम जमुना तीरे
नमानी जब कदा गंभीर गया बाचा श्रेयाजुक्त
गंभीर बाचा नारायण कहेंगे,
सिया जी का जगतपति
लक्ष्मी के साथ में वहाँ पर है, कहेंगे से क्या कर रहा है जरा चमत्कार
नहीं
एकदम। और हम लोगों को इससे शांति नहीं होगी। लखन जी वृंदावन में कुंज में फूलों के गुच्छे लेकर प्रस्ताव चमक वो मई पंख उनकी सेवा कर, बल्कि ऐसी पंखा धरने से नहीं और कितनी सब सेवाएं
हैं।
इसलिए ऐसे लोग हैं परम भागवत हैं। इसलिए वही ऐसी जो भक्ति व्यक्तियों भगवान के चरण में पराशांति प्रेम धन दे तो आनी, वैसी भक्ति कृष्ण के चरण में प्रेम धन को, उसमें भक्ति नौ प्रकार की, इनमें से कोई एक प्रकार की भी भक्ति की जाए तो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। कोई कोई सभी कुछ सभी भक्ति करते हैं, कोई कोई 64 भक्ति में से सभी करीब करीब थोड़ा थोड़ा बहुत करते हैं, और कोई कोई उनमें से 9 को करते हैं, और कोई कोई 9 को छोड़ करके कोई उसमें श्रवण ही करते कोई एक अंग साधन करते हैं और कोई बहु अंग साधन करते हैं, किंतु निष्ठा से एक ही में भी निष्ठा रहे तो प्रेम
तरंग।
जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम साक्षात निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलखन क्रियत भगवती अध्याय भगवान की कथाओं का नामों का रूप गुण और लीला का स्मरण करता है, उनका कीर्तन करता है और उन्हीं को मन के द्वारा स्मरण करता है, उनका पाद सेवन करता है, कैसे पाद सेवन करेगा, पैर तो भी साधक भक्तों को मिलेंगे नहीं तो उनकी क्या सेवा है पाद सेवन, तो उनको अपने पैरों से भगवान की सेवा में परिक्रमा लेते हैं और मन के द्वारा उनके चरणों को दबा रहा हूं ऐसी भी भावना रखते हैं और परिक्रमा करते हैं, और उस समय हरे कृष्ण या कोई भी नाम जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
श्री कृष्ण गोपाल हरे
गोविंद गोविंद हरे नंद किशोर कृष्ण यशोदा अनय प्रसिद्ध श्री बलवंत जीवन, ये सब नामों का उच्चारण करता हुआ मन ही मन में उनके चरणों को पलट रहा है और परिक्रमा कर रहा है, इससे क्या होगा सब सिद्धि वहीं पर हो जाएगी, सब सिद्धि कर
करत लेता
सब सिद्धियां कर एक इसी अंग के द्वारा। उसी प्रकार से श्रवण के द्वारा, श्रवण के द्वारा परीक्षित महाराज परीक्षितो अभवत श्रवण, श्रवण से परीक्षित महाराज उन्होंने फिर ध्यान करने को उनको समय हुआ कि नहीं, पाद सेवन करने का कीर्तन करने का समय हुआ न, अर्चन किया उन्होंने वंदना किया दास शक्ति आत्मनिवेदन कोई भी कुछ नहीं दिया, केवल मात्र एक क्या सुखदेव गोस्वामी को, ऐसे मुक्त महापुरुषों के मुख से हरि कथा श्रवण करने से सहज ही में वो अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, इसलिए बतलाया ऐसे भगवान के नाम और कथाओं का लीलाओं का कौन नहीं श्रवण करेगा आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर, उपगीयमाना औषधा सत्र मनोविराम कौतम श्लोकनानुवादा बिना पशु, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आत्मघाती है इसके अतिरिक्त या दूसरों की हत्या करने वाला हिंसक प्राणी है, वही भगवान की कथाओं से विशेष करके सुखदेव गोस्वामी जैसे निवृत्त तरसई, तरसई मैंने प्यास, उनको प्यास नहीं, प्यास नहीं है मैंने क्या पानी का प्यास नहीं, विषय भोगों की प्यास जिनके अंदर नहीं, कोई प्रकार की कामना वासना कुछ भी नहीं, ऐसे महापुरुषों के विषयी मुमुक्षु जोगी तपस्वी और भक्त सभी के लिए ही ये श्रवण करना ही उसके लिए महा रामबाण है, महौषधि है, निश्चित रूप में वो, इसलिए कहा गया जो लोग ऐसी कथाओं का श्रवण नहीं करते हैं ना
वो आत्मघाती
हैं,
बिना पुस्तक
उनका सब प्रायश्चित व्यर्थ है।
केवलम
सब कुछ उनका विश्व कथा समय ये वही केवल परिश्रमी है। यदि भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हुई और ध्यान कर रहा है कोई यदि भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है और हरिनाम भी कर रहा है तो पंडस्तम है। हरि कथा में रुचि नहीं है और हरिनाम हरे कृष्ण कर रहा कथा हो रही है ये सब उसके कान में नहीं जाता या उठ करके चल दिया तो समझो जैसे बेकार कहीं करेगा। इसलिए जितना ही वो अधिक श्रवण करेगा उतना ही कीर्तन अपने आप होगा और वो सिद्ध हो कीर्तन होगा।
भक्ति संग्रह बोलते हैं रामेर प्रति निष्ठा है श्रवण रूप नहीं होता यदि हरि कथा
जो तो भक्ति अंग आछे नाम श्रवण पर सब श्रवण के ऊपर में सब कुछ जिसने मन दे करके सुना ना
श्रवण
वो सभी अंगों में ही उसकी रुचि उत्पन्न करा देगा। एक ही नहीं सभी अंगों में ही रुचि आठों अंगों में ही रुचि करा देगा। और हरि कथा में रुचि नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं रुचि नहीं वो जो उठ करके चला गया रुचि नहीं होती है उसका चित्त दूसरी जगह में बना करा नाम करा देता है। एक बार एक व्यक्ति था कोई आया था मठ में रहने के लिए तो वो हरिनाम उसको दे एक दो वर्ष के बाद में तीन वर्ष के बाद में वो भजन कर रहा था तो एक दिन सवेरे से उठ करके 3 बजे से उठ गया